ये आकाशवाणी है। अब आप नईम अख्तर से समाचार सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने आज झारखंड के रांची में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र संकल्प पत्र जारी किया। इससे पहले उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। श्री अमित शाह आज घाटशिला के ढाल भूमगढ़, हजारीबाग के बरकट्ठा और चतरा के सिमरिया में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। वो झारखंड के 2 दिन के दौरे पर कल रात रांची पहुंचे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री ब्रिस्बेन जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया में भारत के 4th वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे। वो कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ विदेश मंत्री स्तरीय संवाद की 15वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया के संसद भवन में 2nd रायसीना डाउन अंडर के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के 2nd चरण में डॉक्टर जयशंकर 8 नवंबर को सिंगापुर जाएंगे। इस दौरान वो आसियान भारत थिंक टैंक की 8वीं गोलमेज वार्ता को भी संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत के आत्मनिर्भर अभियान के अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं और वर्ष 2029-30 तक देश का रक्षा निर्यात 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने युवाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्षमता को विकसित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने के सरकार के प्रयास पूर्ण रूप से सफल हो रहे हैं। 10 वर्ष पूर्व देश का रक्षा निर्यात लगभग 600 करोड़ रुपए का था, जो अब 21,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कोलंबिया में पार्टियों के सम्मेलन की 16वीं बैठक में भारत की अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यनीति और योजना NBSAP का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने इसे अद्यतन करने में भारत के संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। इस योजना के अंतर्गत पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने की कार्यनीति की रूपरेखा तैयार की जाती है। इसके अलावा ये पारिस्थितिकी तंत्र बहाली, प्रजातियों की पुनर्प्राप्ति कार्यक्रमों और समुदाय संचालित संरक्षण प्रयासों के माध्यम से चुनौतियों का समाधान किया जाता है। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि अद्यतन जैव विविधता कार्यनीति खराब पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, आर्द्र भूमि की सुरक्षा और समुद्री तथा तटीय क्षेत्रों के सतत प्रबंधन पर केंद्रित है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कार्ययोजना 2050 तक प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने की दीर्घकालिक दृष्टि के साथ 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देशक है। ये दस्तावेज पिछले महीने की 30 तारीख को जारी किया गया था। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज माओवादियों के हमले में 2 पुलिस कांस्टेबल घायल हो गए। ये जगरगुंडा शहर के साप्ताहिक बाजार में ड्यूटी पर थे। इसी दौरान माओवादियों ने इन पर हमला किया। इलाके में तलाशी तेज कर दी गई है। भाई दूज का त्यौहार आज उमंग और उत्साह से मनाया जा रहा है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर टीका लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये शुभ त्यौहार भाइयों और बहनों के बीच स्नेह को गहरा करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कामना की कि प्रेम, समर्पण और भक्ति का ये पर्व सभी के जीवन में अपार खुशियां लाए। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 8:30 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। भैयादूज के पावन पर्व पर आज मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम के कपाट भी आज 12:05 बजे पर बंद हो जाएंगे। इस वर्ष 15 लाख तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ धाम और 7 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने यमुनोत्री धाम के दर्शन किए हैं। मुंबई में न्यूजीलैंड के साथ खेले जा रहे तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में 174 रन बनाकर भारत को जीत के लिए 147 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने भोजनावकाश तक 6 विकेट पर 92 रन बना लिए हैं। आज न्यूजीलैंड ने अपने कल के स्कोर 9 विकेट पर 171 रन से आगे खेलना शुरू किया और सिर्फ 3 रन ही जोड़ सकी। इससे पहले भारत ने न्यूजीलैंड के पहली पारी में 235 रन के जवाब में 263 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।